ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके विभिन्न आयाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
AI आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हम जाने अनजाने इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हर पल AI हमारे साथ है। हमारा फोन हमारे डेटा को इकट्ठा कर रहा होता है और ये डेटा बाहर जाकर के कैसे फिर से हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है, इसी पर आज विस्तार से चर्चा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और नजदीक से समझने के लिए आज हमारे साथ AI एक्सपर्ट डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरुआत करना चाहेंगे, AI आखिर है क्या?
AI एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ह्यूमन ब्रेन जो काम करता है वही चीज हम लोग इसको एक मशीन के अंदर लेके आना चाहते हैं। ये प्राइमरी मोटो है AI का, लेकिन ये करते हुए हम लोग को बहुत साल हो गए, तो 60s या 50s में ये जाने चालू हुआ कि कैसे आदमी का जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस फैक्टर हम लोग मशीन में लेके आए, तो उधर से मशीन लर्निंग करके एक जो सब्जेक्ट है वो शुरू हुआ और हम लोग आज ये जगह पे पहुंच गए हैं कि हम लोग हमारे डेटा से कोई भी मशीन को ट्रेन कर सकते हैं और वो मशीन हमारे दिए हुए जो कमांड है उसके मुताबिक हम लोगों को कंटेंट क्रिएशन करके या कोई भी रिस्पांस दे सकता है। तो आई थिंक ये हर एक जगह पे हमारा जिंदगी को चेंज कर रहा है, हमारा जिंदगी को टास्क कर रहा है। हर फील्ड आप देखिए, आज हेल्थ केयर मेडिसिन देखिए, बैंकिंग फाइनेंस देखिए, रिटेल देखिए, मीडिया एंटरटेनमेंट देखिए, एजुकेशन देखिए, हर एक जगह में AI हम लोगों के जिंदगी को छू रहा है, हम लोगों के जिंदगी को चेंज कर रहा है। बट ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक टूल है, अलग टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस जो है वो चीज हम लोग अचीव कर रहे हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि AI वो मशीन है जो खुद सोच सकती है, समझ सकती है और फिर हमें उसके हिसाब से जवाब दे सकती है।
हाँ जी।
हम थोड़ा और गहराई में जाएं और बिल्कुल AI की शुरुआत से ही आते हैं कि वो शुरू कैसे होता है और धीरे धीरे करके आज जिस स्थिति में AI है, जैसे वो हमारी जिंदगी में उपयोग हो रहा है, वहां तक हम कैसे पहुंचे हैं।
ये जो जर्नी है ये 1950s या उससे भी पहले तक के जाता है, जबकि हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल हम लोग बनाते थे जिसको हम लोग नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल बोलते हैं, वेनिला मशीन लर्निंग मॉडल। उसपे नॉर्मली कोई भी एक मैथमेटिकल मॉडल को डाटा से ट्रेन किया जाता था और वो डाटा से डाटा का जो पैटर्न है वो पैटर्न को समझ के फिर उसको जब भी हम लोग कोई भी काम करने देते थे तो वो कर सकते थे उसी के मुताबिक। तो वो जो बुद्धिमत्ता या वो जो इंटेलिजेंस फैक्टर डाटा के अंदर है वो एब्जॉर्ब कर लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और एक फील्ड की तरफ आगे जाए, हम लोग जिसको डीप लर्निंग बोलते हैं और उसको यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क, जो कि काफी हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ये ब्रेन से मिला जुला होता है। जैसे कि हमारा ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स रहता है और उधर भी एक नेटवर्क जैसा रहता है, एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड, ये जगह पे भी हम लोग वही चीज करते हैं, बट ये हम लोग मैथमेटिकली सेमीकंडक्टर के अंदर करते हैं। इसमें हम लोग ऐसा न्यूरल नेटवर्क बना के इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा देकर हम लोग ट्रेन करते हैं और वो ट्रेन करता है, आप लोग आज देख ही रहे हो, ChatGPT है, Gemini है और दूसरा मॉडल है Midjourney है, जिसमें कि ये सब डेटा एक बार वो समझ लेने के बाद वो खुद नया डेटा जेनरेट कर सकता है। जैसे कि वो नया इमेज बना सकता है जो इमेज हम लोग को भी सोचा भी नहीं है, वो नया स्टोरी बना के दे सकता है, ओके, नया कोई भी अगर कहानी है उसको बना के दे सकता है, बाकी सबको कर सकता है। तो ये जर्नी है, ये जर्नी में बहुत कुछ हम लोग स्टार्ट किए नॉर्मल मशीन लर्निंग से, आज आ गए हम लोग डीप लर्निंग यूजिंग न्यूरल नेटवर्क, आज हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो LLM बोलते हैं वो सब आ गए, जो कि बहुत कुछ काम हमारा आसान कर सकता है।
बिल्कुल, हम अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो AI वहां पर भी है। हम अगर सुबह से और रात तक के अपने दिन के सफर को देखें तो AI एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या देखते हैं कि AI आपकी जिंदगी को सुबह से और रात तक कैसे प्रभावित कर रहा होता है या चला रहा होता है?
आप अपना मोबाइल फोन को, जो कि हमारे सबके पास आज है, उसी को अगर देख लीजिए तो ये मोबाइल फोन में बहुत AI का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हम लोग सुबह उठ के अगर ऑफिस आना है, हम लोग कोई भी अगर कैब बुक करते हैं, उसमें जो वो ऐप है उसके अंदर भी AI छुपा हुआ होता है। हम लोग आते हुए कुछ अगर गाना सुन के आ रहे हैं, जो गाना रिकमेंडेशन हो रहा है वो उसमें भी AI का यूज हो रहा है। हम लोग आके कोई अगर खाना कोई जगह से मंगवाना चाहते हैं उधर भी AI का यूज हो रहा है। आप कोई भी मूवी देख रहे हो वो जो भी रिकमेंडेशन आ रहा है या कुछ आ रहा है वो भी AI का यूज हो रहा है। हेल्थ केयर, आप अगर कोई भी जगह से डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी ये करते हो, तो जो भी आपका जितना भी टेस्ट होता है, जितना भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, आजकल वो सब भी एआई के थ्रू से प्रोसेस करके एक प्रिलिमिनरी इन्फरेंस निकाला जाता है और उसके बाद वो डॉक्टर को दिया जाता है। आप ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं, आपका बच्चे लोग ऑनलाइन एजुकेशन में करते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन है, उसमें हर एक कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाए, कंटेंट को कैसे पर्सनलाइज्ड किया जाए, कंटेंट को कैसे अडेप्टिव किया जाए, ये सब के लिए हम लोग एआई ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर देखे सुबह से लेकर शाम तक के आपने जैसे पूछा, तो पीछे से बहुत एआई एमएल मॉडल हम लोग यूज करते हैं, हर वक्त हम लोग को पता नहीं चलता, बट एआई ऑलरेडी हमारे जीवन को छू रहा है।
जैसे अपने इंडस्ट्रीज की बात की, तो आज एआई उद्योगों में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है?
एआई हर एक उद्योगों में, हर एक इंडस्ट्री में आज यूज हो रहा है। सो शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर से। हेल्थ केयर में मैं जैसे बोला कि एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जिसको हम लोग क्लिनिकल इमेजिंग बोलते हैं और क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें कि एआई एल्गोरिथम कोई भी बड़ी बीमारी को पकड़ने का क्षमता रखते हैं, तो चाहे कैंसर हो, चाहे अल्जाइमर हो, चाहे रेटिनोपैथी हो, तो ये सब जो कि कन्वेंशनल वे से हम लोग नहीं कर सकते वो एआई पकड़ सकते हैं। आजकल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आ गया, जो कि आपके बॉडी के जरूरत के हिसाब से आपको ऐसा मेडिसिन दिया जाता है। ये कॉमन मेडिसिन नहीं है, ये पर्सनलाइज्ड है, जो कि बेहतर काम करता है किसी के लिए भी, वो आ गया है। बाकी हर एक क्षेत्र में आप अगर देखिए हेल्थ केयर में एआई बहुत ही यूज हो रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी आप देखोगे कि जितना भी रिकमेंडेशन इंजिन्स है, आपका क्रेडिट रिस्क असेसमेंट जो बोलते हैं कि आपको कोई भी लोन देने से पहले आप ये लोन रीपे कर पाएंगे कि नहीं, ये सब जो चीजें एनालाइज किया जाता है कोई बैंक के थ्रू से, आजकल एआई से हो रहा है। कोई भी फ्रॉड जो केसेस हो रहा है आजकल बहुत बैंकिंग क्षेत्र में, इसको एक्चुअली पकड़ने का एक ही तरीका है, वो है एआई। साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हम लोग आज घिरे हुए हैं सब आईओटी डिवाइसेस से, हमारा मोबाइल एक आईओटी डिवाइस है जिसमें कि बहुत आईओटी डिवाइस है, तो हमारा डिजिटल लैंडस्केप जितना बढ़ रहा है उतना ही हमारा खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये जितना भी साइबर क्रिमिनल है उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोगों को अटैक करने के लिए पर्सनल लेवल पे या हमारा कंपनी को ये करने के लिए। लेकिन इसका जो तौर है और इसको कैसे हम लोग फाइट बैक कर सकते हैं, वो भी यही है, यही से ही हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली इन द एजुकेशन, मैं जैसे कि बोला कि आजकल पर्सनलाइज्ड एजुकेशन आ गया है, एडेप्टिव एजुकेशन आ गया है, तो ये समझते हैं कि कौन सा स्टूडेंट का क्या नीड है, कौन सा कॉन्सेप्ट में उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके हिसाब से उसको कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जितना भी क्षेत्र है, इसमें मैं तो खाली थोड़ी क्षेत्र का नाम लिया, बट हर एक जगह में आप अगर देखोगे तो आजकल एक्सटेंसिवली एआई यूज हो रहा है, और आज से 5 साल बाद आप देखेंगे और भी ज्यादा होगा, और हमारा ऑलरेडी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है एआई।
बिल्कुल, आपने स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की। स्वास्थ्य में अगर हम देखें तो कई ऐसे जटिल ऑपरेशन होते हैं, या अभी भी हमारे देश में कई ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो क्या एआई का इस्तेमाल उन दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे डॉक्टर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या संभावना है उसमें?
जरूर किया जा सकता है, और कोई कोई ट्रायल बेसिस पे ये हो भी रहा है, इवन कि हमारे इंडिया में भी हो रहा है ऑन ए ट्रायल बेसिस, जो कि दूरदराज के क्षेत्र का जो डॉक्टर है शायद वो स्पेशलाइज नहीं है एक कोई क्षेत्र में, तो बाकी जो डॉक्टर है उनको हेल्प कर सकता है एआई का यूज करके, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि एआर वीआर और भी कुछ मेटावर्स जैसे टेक्नोलॉजी यूज करके उनको गाइड किया जाता है कि कैसे एक पर्टिकुलर ये किया। और आपने रोबोटिक्स का बात किया, रोबोटिक सर्जरी वगैरह जो है आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है, कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है वो रोबोटिक सर्जरी से ही किया जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन डॉक्टर से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ प्रिसीशन कि कितना प्रिसीशन से वो करे।
साथ ही आज एक बहुत बड़ी बीमारी कैंसर है, और कैंसर को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो एक आम डॉक्टर या एक्सपर्ट डॉक्टर भी करने में कई बार बहुत मुश्किल होती है, तो आजकल क्या एआई का इस्तेमाल इस क्षेत्र में किया जा रहा है?
ये भी ट्रायल बेसिस में किया जा रहा है, हर एक जगह तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसका भी जो नतीजा है बहुत अच्छा निकल के आया है कि बहुत जगह पे जो स्कैनिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी के जो मैं बात बोला और जो क्लिनिकल इमेजिंग का जो मैं बात बोला, उसमें क्या किया जाता है बहुत अर्ली स्टेज में, ये सब गंभीर बीमारी जो है ये गंभीर बीमारी को पकड़ में आ जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी डॉक्टर लोगों को आसानी हो जाता है, क्योंकि ये इतना माइन्यूट लेवल पे जाके उसको डिटेक्ट कर सकता है कि हम लोग जो कन्वेंशनल वे है या डॉक्टर खाली आंखों से देख के उसको पता नहीं कर सकते, तो ये हो रहा है।
जी, हमने मोबाइल फोन की बात की थी कि मोबाइल फोन हमारी सुबह से और रात तक की बातों को सुनता है, डेटा इकट्ठा करता है, और उसी से फिर वो डेटा प्रोसेस होता है, तो इसकी एक जर्नी जो डेटा की है वो कैसे शुरू होती है और वो मेटा डेटा क्या होता है, इसके बारे में आप विस्तार से बता सकें तो?
जैसे कि हम जानते हैं कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल को डेटा चाहिए, वो एक्चुअली जो भी सीखता है, जो भी इंटेलिजेंस गैदर करता है वो डेटा से ही करता है, तो डेटा का जो जर्नी है ये शुरू होता है आपका मोबाइल डिवाइस या कोई भी जगह से ये डेटा कलेक्ट होता है, पब्लिक इंटरनेट से भी डेटा कलेक्ट होता है एंड वही डेटा को बाद में प्रोसेस करके हम लोग उसको मशीन लर्निंग मॉडल को या डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इंटेलिजेंस आपको डेटा के अंदर से ही मिलता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल है उसको और कोई तरीका नहीं है ट्रेन करने के लिए, वो एक ही तरीका है, वो है आपका डेटा। तो यही डेटा का जानी है। तो आपने सही बताया कि डेटा हमारे से ही जाता है, ओके, इन वन वे और द अदर, इन द फॉर्म ऑफ हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं या कुछ ऐप यूज करते हैं या कोई भी चीज यूज करते हैं या सोशल मीडिया यूज करते हैं, और वही डेटा को प्रोसेस करके वही डेटा को काम में लगाया जाता है, उसी से ही इंटेलिजेंस गैदर करके मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया जाता है।
डेटा से सवाल एक और उठता है, वो है प्राइवेसी का, कि ये मेरी अपनी जिंदगी है और आप इसकी जानकारियां इकट्ठा करके इसको मेरे ही खिलाफ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये प्राइवेसी का सवाल कितना बड़ा साथ साथ चल रहा है और दुनिया में इसकी बहस की स्थिति क्या है, और क्या कुछ ऐसे कानून भी बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति बनती दिख रही है?
डेटा प्राइवेसी का ये जो मैटर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। नॉर्मली तो ये आपके डाटा को आपके खिलाफ यूज नहीं करता है, आपके काम के लिए, आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी चांसेस रह जाता है कि ये चीज अगर कोई गलत आदमी के हाथ में चला गया या कुछ चला गया तो यही डाटा को गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डाटा प्राइवेसी जो है ऑलरेडी डाटा प्राइवेसी रूल्स यूरोप में बनाया हुआ है, जिसको हम लोग GDPR बोलते हैं, इंडिया में भी हम लोगों का डीपी जो एक्ट है वो आ गया है। तो इसको यही एंश्योर करने के लिए कि जो डेटा ले रहे हो वो अगर अच्छी तरीके से यूज करे और मेरे सहमति से अगर यूज किया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेटा तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर डेटा AI मॉडल को नहीं देंगे तो फिर ये टेक्नोलॉजी कोई काम का नहीं आएगा, तो वो देना पड़ेगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल वे से और सहमति लेके, और मैं जब भी चाहूं कि नहीं अभी मेरा डाटा यूज मत करो तो उन लोगों का ये प्रोविजन रहना चाहिए कि वो डाटा न, और मैं ये भी बोल सकूं कि मेरा डाटा जो ले रहे हो खाली इसी काम के लिए इस्तेमाल करो, दूसरे कोई काम के लिए नहीं। तो ये सब चीजों के ऊपर जो अभी पॉलिसीज बन रही है इंडिया में भी है, बाहर का कंट्री में भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी कुछ सहमति हो जाएगा इस मामले में।
AI एक विकसित होती टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर में इस पर लगातार रिसर्च जारी है, भारत में AI रिसर्च के क्षेत्र में क्या हो रहा है?
भारत में भी AI रिसर्च के क्षेत्र में बहुत कुछ काम हो रहा है। जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है IITs वगैरह या दूसरे भी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी AI के ऊपर काम होता है। ये काम और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अच्छे हैं इंडिया, जो सब लोग जानते हैं। रिसर्च में भी हम लोगों को और ज्यादा फोकस करना चाहिए, हो रहा है अभी, और भी फोकस करना चाहिए, और भी फंडिंग होना चाहिए रिसर्च के लिए, क्योंकि भारतीय जो है ये IT AI ये क्षेत्र में बहुत आगे है। आप अगर बाहर भी जाएंगे जितना भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें अगर देखेंगे जो जितना रिसर्चर्स है उनमें से बहुत लोग हमारा भारतीय है।
अगर हम आने वाले 5 साल की बात करें, आप AI एक्सपर्ट हैं, आप 5 साल में AI को कैसे देख रहे हैं अपनी जिंदगी में?
5 साल में AI हमारी जिंदगी का एक अविच्छिन्न अंग हो जाएगा, जिसमें कि AI हर एक जगह पे यूज होगा, और खाली यूज ही नहीं होगा, इससे हम लोग का बहुत बेनिफिट भी होने वाले हैं। सो हम लोग अगर देश का बात करें तो हमारे देश में हम लोग अगर AI को यूज करें, हमारे इकोनॉमी को AI एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। हम अगर हमारे जॉब्स की बात करें तो हमारा जो यंग जनरेशन है अगर ये AI पे ट्रेंड है तो उन लोगों को देश या विदेश में जॉब मिलने का कोई खतरा नहीं होगा, उन लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि AI का बहुत ज्यादा जॉब आने वाला है और उस क्षेत्र में ये कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो एज ए कंट्री हम लोग AI सुपर पावर बन सकते हैं, जैसे कि आज हम लोग IT सुपर पावर है, पूरा दुनिया मानते हैं, हम लोग AI का भी सुपर पावर बन सकते हैं। उसके लिए हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल है, हमारा गवर्नमेंट का रोल है, हमारा पब्लिक का रोल है, हमारा इंडस्ट्री का रोल है, सबका रोल है। तो हमारा जिंदगी, हमारा इकोनॉमी, हमारा देश, सब कुछ को AI चेंज कर सकता है।
बिल्कुल, हम यही उम्मीद करेंगे, जैसा आपने कहा कि हम एक IT सुपर पावर हैं और आने वाले दिनों में हम AI सुपर पावर भी हो सकते हैं। डॉक्टर उत्पल, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें AI के बारे में इतनी गहरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके विभिन्न आयाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9289094044 है।